हमसे नहीं होगा। आहना ने बेबस मायूस निगाहों से उसे देखा। अक्षय ने उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाया और बेहद मोहब्बत से बोला, कोशिश तो कीजिए, आज नाकाम होंगी पर कभी तो कोशिश रंग लाएगी और आपके लबों पर फिर वही सौम्य सी मुस्कान सजेगी जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आता है। अक्षय के कहने पर आहना ने मुस्कुराने की कोशिश की पर उसकी आंखें भीग गईं। अक्षय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर को चूमते हुए बोला, कोई बात नहीं, उदास या दुखी होने की कोई बात नहीं है। दुख पड़ा है तो उससे बाहर निकलने में वक्त भी तो ज्यादा लगेगा, पर जल्दी ही आप फिर से हंसने मुस्कुराने लगेंगी। नाश्ते के लिए आज अक्षय जिद करके आहना को नीचे लेकर गया। जहां अक्षय के साथ आहना को देखकर बाकी सभी खुश हो गए, वहीं आदत से मजबूर रूपाई जी अपनी कड़वी जुबान से जहर उगलने से बाज न आई और तंजिया लहजे में बोली, निकल गई महारानी अपने कोप भवन से बाहर, हमें तो लगा था कि सारी जिंदगी तुम अपने कमरे में बंद होकर मातम ही मनाती रहोगी। उनके ताने सुनकर आहना की पलकें भीग गईं। इतने में अक्षय, जिसे उनकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी, उसने तुरंत ही सख्त लहजे में उन्हें टोक दिया था, मम्मी प्लीज थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए, वो पहले ही इतनी तकलीफ में है और आप उनके दुख को समझने, उन्हें प्यार से संभालने के बजाय उन पर तंज कसती रहती हैं। मैं आपको ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि आहना के साथ इस तरह का व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्हें चेतावनी भरी निगाहों से घूरने के बाद अक्षय आहना को लेकर आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी रूपाली जी क्रोध से जल उठीं। अभिजीत जी बस अफसोस भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए सोचते रह गए कि किस मिट्टी से बनी है वो। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अक्ल नहीं आई है, जाने अब क्या करके मानेंगी वो। भाभी, आप मम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा, वो जो मुंह में आता है बोल देती हैं। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया कीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि आप पलटकर जवाब देना शुरू कर दीजिए। जब अपनी जैसी तीखी जुबान से उनका पाला पड़ेगा तो एक ही बार में सारी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे अन्वय ने आहाना को उदास देखकर ये सब कहा था। अपनी माँ से पहले ही उसका 36 का आंकड़ा था और अब तो वो उनसे खुन्नस खाए बैठा था। कोई बात नहीं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, एक बार फिर भावहीन चेहरे के साथ उसने झूठ कहा था और अक्षय बस उसकी शक्ल देखता रह गया था। मेट सबको खाना देने लगी तो आहना उठकर उसकी मदद करने लगी। मेट, जो उसके दुख की साक्षी थी, उसने बड़े ही अपनेपन से उसे रोकते हुए कहा, भाभी आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं, हम कर देते हैं आपकी मदद। आहना का चेहरा अब भी भावहीन था। हाँ, उस मेट के प्रति वो कृतज्ञ थी, इन दिनों उसने भी बहुत कुछ किया था उसके लिए, जबकि उनका कोई रिश्ता नहीं था। शायद तभी लोग कहते हैं कि रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, इंसानियत का रिश्ता सबसे खास होता है और अक्सर अनजान लोग अपनों से ज्यादा हमारे दुख समझ लेते हैं। यहाँ रूपाली जी, जो रिश्ते में उसकी सास थी, वो उनकी तकलीफ नहीं समझ सकी, पर वो मेट जो पैसे के बदले उसके घर में काम करती थी, वो उसके दुख की साथी बन गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर ने आहना को कहीं बाहर लेकर जाने को कहा है। अभिजीत जी उसकी बात पर सहमति में सर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, हम आपसे पूछने ही वाले थे, क्या सोचा है आपने इस बारे में? हम आज दोपहर में यहाँ से निकलने वाले हैं, कहाँ जाएंगे ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर हफ्ते 10 दिन वहाँ रुकेंगे। अच्छा फैसला किया है बेटा, बस बहू का ख्याल रखना। अभिजीत जी प्रसन्न थे, वहीं रूपाली जी ये सुनकर खींच उठी थीं। पहले ही तुमने इतनी छुट्टियाँ ली हैं, एक महीने से हॉस्पिटल नहीं गए हो और अब काम का हर्ज करके घूमने जाना चाहते हो। हमारा जाना आहाना के लिए ज़रूरी है और इस वक्त उनसे ज़्यादा अहम और कुछ नहीं है मेरे लिए। हॉस्पिटल तो 10 दिन बाद भी ज्वाइन किया जा सकता है, पर अगर इन सब में आहाना को कुछ हो गया तो वो वापस लौट कर नहीं आएंगे और मेरे इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकेगा। इसीलिए अभी मैं सिर्फ आहाना और उनकी सेहत पर ध्यान देना चाहता हूँ। एक बार हालात थोड़े संभल जाएं तो वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँगा। अक्षय ने सपाट लहजे में गंभीर भाव के साथ जवाब दिया। रूपाली जी मन ही मन कूड़ उठी। दोपहर के वक्त बड़ों का आशीर्वाद लेकर दोनों घर से निकल गए। कुछ देर आहाना खिड़की से बाहर देखती रही, फिर सीट से अपना सर टिकाते हुए अपनी आंखें मूंद दी और उसका दिमाग जिस स्थिति में था, जहन जिस कदर थका हुआ था, कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। अक्षय सारे रास्ते कभी सामने तो कभी आहाना को देखते हुए ड्राइव करता रहा। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अक्षय ने उसे जगाया। पहले तो आहाना उनींदी अधखुली आंखों से अलसाई हुई सी उसे देखती रही, फिर जब उसका दिमाग सचेत हुआ और नींद की खुमारी कुछ कम हुई तो नजर आसपास घुमाई और अगले ही पल चौंकते हुए निगाहें अक्षय की ओर घुमा ली। अक्षय ने उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों को हैरान परेशान सा खुद को तकता पाया तो हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, आपकी खोई मुस्कान को तलाशने के लिए मुझे इससे बेहतर जगह समझ नहीं आई। मैंने सुना है कि अपनों का साथ और प्यार पाकर इंसान बड़े से बड़ा दर्द भूल जाता है, बड़े से बड़े दुख से बाहर निकल आता है, बस इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। अक्षय की बात सुनकर आहना भावुक हो गई।
नजरें दूसरी ओर घुमाई जहां उसके घर का गेट नजर आ रहा था। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और सामने खड़े दृशांत को देखकर उसकी आंखें भीग गईं। कार घर के अंदर दाखिल हुई। जब तक दोनों कार से बाहर निकले, पूरा शुक्ला परिवार वहां उनके स्वागत को उपस्थित हो चुका था। आहना अपनी मम्मी पापा को देखकर खुद को रोक न सकी और जाकर उनके सीने से लगकर रो पड़ी। उनकी भी आंखें भीग गईं, पर दिल को सुकून भी मिला। दृशांत, पल्लवी सबने उसे बहुत प्यार से संभाला था। अंतरा और निशांत भी उसके गले लगकर रो पड़े थे। अक्षय कुछ पल लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए इस भावुक पल को देखता रहा, फिर उसने झूठी नाराजगी जाहिर करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये तो बहुत गलत बात है, मैं अनु को यहाँ लेकर आया ताकि वो अपने परिवार के पास आकर अपनी खोई मुस्कान तलाश सके, और यहाँ तो आप सब उनके साथ रोने लगे। कहा, मैंने सोचा था कि अपने अपनों के पास आकर वो अपना दुख दर्द भूल जाएगी, आप सब संभाल लेंगे, पर यहाँ तो आप सब भी उसके साथ शामिल हो गए। उसकी बात सुनकर सबने खुद को संभाला। जयेश जी ने कृतज्ञ निगाहों से उसे देखा और जवाब में अक्षय ने मुस्कुराकर आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। सब अंदर आए। पल्लवी जहां चाय पानी की व्यवस्था में लग गई, वहीं बाकी सब आहना और अक्षय को घेर कर बैठ गए। कितनों दिनों बाद आहना की आवाज सुनी थी उन्होंने, ऐसा लगा जैसे उसे खोकर दोबारा पा लिया हो। कुछ देर बाद दोनों को फ्रेश होने को बोलकर जयंती जी रात के खाने की तैयारी में लग गईं। निशांत उनका सामान कमरे में ले गया। अंतरा दोनों के साथ कमरे तक आई, फिर शरारत से आंखें मटकाते हुए बोली, अब आप दोनों फ्रेश हो जाइए, हम डिनर से पहले आपको बुलाने नहीं आएंगे और किसी को आपको डिस्टर्ब भी नहीं करने देंगे। चंचल मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए उसने निगाहों से दोनों को छेड़ा और झट से कमरे से भागते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अक्षय उसकी इस शरारत पर मुस्कुरा कर रह गया। वहीं आहाना आकर उसके सीने से लग गई और अपनी कोहनी उसकी पीठ पर लपेट दिया। थैंक यू हमें यहाँ लाने के लिए। मुझे आपका थैंक यू नहीं, अपनी पुरानी अनु वापस चाहिए। अगर कर सकें तो हमारी अनु लौटा दीजिए हमें। अक्षय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर उसके सीने से लगी आहाना की बाहों की पकड़ उस पर कस गई। कोशिश करेंगे, बस इतना बहुत है मेरे लिए। अक्षय उसकी बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दिया। कमिंग सून, कैसा लगा आज का भाग बताना बिल्कुल न भूलें।